اس کے بعد اب آخری رکوع جو ہے یہ ہے وہ آیتیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھتے تھے. آپ کہہ لیجئے کہ یہ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع عظیم ترین مقام ہے قرآن پاک کا. پہلی 6 آیتیں اس کی جو ہے نا, اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس رات نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی. آپ کھڑے بیٹھے لیٹے روتے رہے, نماز تہجد کے دوران بھی آپ پر رقت طاری ہوئی. ابھی بیچ میں کچھ حدیثیں کوٹ کروں گی تو آپ خود بھی سنیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آپ نے بہت طویل سجدہ کیا, گریہ آپ پہ طاری ہو گیا. آپ کی سجدہ گاہ جو تھی, سجدہ کا جو گاہ تھی یعنی جہاں پہ سجدہ کر رہے تھے, وہ آنسوں سے گیلی ہو گئی. پھر آپ کچھ دیر لیٹے, پھر یہ کیفیت برقرار رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی. حضرت بلال جب فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے اور آپ کو اس کیفیت میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا کہ بلال میں کیوں نہ روؤں, آج کی رات میرے رب نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی. پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت کی اور اس وقت آپ کی یہ کیفیت گریہ, رقت اور شکر گزاری کی تھی. اور یہاں سے ایک اور چیز نوٹ کریے گا, تقابل جو پیچھے سے ہم کر رہے ہیں, سورۃ آل عمران کا یہ 20 رکوع شروع ہو رہا ہے نا, اور سورۃ بقرہ کے 20 رکوع کی پہلی آیت کیا تھی؟ چلے آیت کا نام بول دیتی ہوں, آیت الایت, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, جس میں آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کی اس آیت میں سب سے زیادہ نشانیاں اکٹھی ہیں, آیت الایات, ساری آیتوں کی جمع. تو وہ بھی آیت اسی مضمون کی تھی, یہاں آپ دیکھیے وہی بات ہے. اور آپ اور میں ان آیات کو پڑھتے وقت اپنے اوپر لیں کہ تہجد کا وقت یعنی رات کو جب آنکھ کھلتی ہے نا, اس وقت یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, اور آپ کو مجھے بھی پڑھنا ہے. اور حضرت عائشہ کی بھی روایت سن لیجئے اس آیت پہ, پھر آیت شروع کریں گے. فرماتی ہیں کہ ایک رات میری باری تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے, میرے ساتھ سوئے, تو مجھ سے فرمانے لگے عائشہ میں اپنے رب کی کچھ عبادت کرنا چاہتا ہوں, میں کر لوں؟ دیکھیے ادب دیکھیے, شوہر ہے اور بیوی سے پوچھ رہا ہے کہ میں نفل عبادت کر لوں. میں نے کہا اللہ کے رسول, اللہ کی قسم میں آپ کا قرب چاہتی ہوں, یعنی بیوی ہونے کے ناطے میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہی رہیں, لیکن یہ بھی میری چاہت ہے کہ آپ اللہ عز و جل کی عبادت کریں. اچھی بیوی اللہ میں ایسی بنا دے, ہم اپنے مردوں کو راتوں کو جگانے والے بنے کہ اٹھو آؤ کم. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بہترین جوڑا ہے جو رات کو شوہر بیوی کو کہتا ہے چلو اٹھو آؤ نفل پڑھتے ہیں, اور بیوی شوہر کو اٹھاتی ہے. آپ دیکھیے کہ اگر یہ جوڑ بن جائے نا, ان جوڑ کا کوئی مقابلہ نہ اس کے لیے نئے وقت کی ضرورت ہے, نہ پرانے کی, نہ شادی کے بعد کہیں جانے کی, نہ آنے کی, نہ رہنے کی, یہ ساری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے. یہ وہ چیز ہے جسے اللہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے. خیر حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اجازت دے دی, اب آپ کھڑے ہوئے اور ایک مشک میں سے پانی لے کر ہلکا سا وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے. پھر جو رونا شروع کیا تو اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی. پھر سجدے میں گئے اور اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی. پھر کروٹ کے بل لیٹ گئے. ذرا سوچے کبھی بہت تکلیف ہو تو ایسے بندہ رات کو جاگتا ہے, اور روتے ہی رہے یہاں تک کہ سیدنا بلال نے آ کر نماز کے لیے بلایا اور آپ کے آنسو رواں دیکھ کر دریافت کیا اللہ کے سچے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. دیکھیں ان کی راتیں اتنی بے چینیوں والی تھی, ہم کتنی لمبی تان کے سوتے ہیں, اللہ میں ہدایت دے دے. آپ نے فرمایا بلال میں کیوں نہ رو, مجھ پر آج رات یہ آیت اتری, ان فی خلق السماوات والارض. پھر آپ نے فرمایا افسوس ہے اس شخص پر, یہ سنیے گا بات, افسوس ہے اس پر کہ جو اسے پڑھے اور اس پر غور و فکر نہ کرے. اب آپ بتائیے پڑھتے تو ہم بھی سارے غور و فکر کتنے کرتے ہیں. ان آیتوں میں غور و فکر کی دعوت ہے, ذکر اور فکر جمع کیا ہوا ہے, دین اور دنیا کے علم کا مجموعہ ہے یہ آیتیں. انشاءاللہ جو اس کا حق ادا کر سکے ہم کریں گے, چونکہ اکٹھا مضمون ہے تو کوشش کروں گی خلاصے کے طور پہ آئند تک اکٹھا چلتے تھے, پھر آگے سے آگے چلیں گے. فرمایا ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں, لآیات لأولی الالباب, خوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. سورہ بقرہ کی جو آیت تھی 64, اس کا اینڈ کیا تھا؟ لآیات لقومی یعقلون, نشانی تھی اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. یہاں اولو الالباب ہے, تھوڑا سا اس کا رب دیکھیے گا. لب کیا ہوتا ہے؟ الباب, پہلے میں سمجھتی تھی دروازے, باب عربی ایسی ہی آتی ہے شروع میں, آپ کو بھی اگر ایسی آ گئی ہے تو کبھی کچھ آ ہی جائے گا انشاءاللہ. یہ باب نہیں ہے, لباب لب سے ہے. لب کہتے مغز کو, برین, जिसको शायद टिपिकल उर्दू में भेजा कहते हैं, हमारे दिमाग के अंदर का वो हिस्सा जो गौर व फिक्र में मदद देता है। दिल जो होता है ना, इसमें जज्बात उभरते हैं, और अकल जो होती है ना, वो दिमाग के बिल्कुल अंदर होती है। तो लुब लबीबा लफ्ज़ हमारे अपने कजन में एक है, शब अच्छी लबीबा, लबीबा कहते हैं अकलमंद को, किसी बात पर पुख्तगी से जमना। रजुलुन लब्बुन कहते हैं वो शख्स जो अपने कामकाज में लगा रहे और उसे छोड़े नहीं। अल्लब्बू कहते हैं किसी अमर पर कायम रहने वाला, और क्याम करने वाले को भी कहते हैं। और ये जो अंदर दिमाग का गुबद, हर चीज का खालिस हिस्सा, मगज, गिरी, बादाम को तोड़ के अंदर से आप उसका जो मगज निकालते हैं, उसके लिए भी लफ्ज यही आता है, लबल लौज। लौज कहते हैं बादाम को। इसी तरह लबब कहते हैं सीने का वो हिस्सा, ये जहां पे हार पहनते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंसान की प्रोमिनेंट जगह होती है ना। तो अकल को भी ये इसलिए कहते हैं कि अकल के अंदर सारी चीजें, यानी दिल और दिमाग के सारे जज्बे जमा होते हैं ना, तो वहां से फिर चीजें सॉर्ट आउट की जाती हैं। असल में यहाँ उलुल अलबाब से मुराद वो लोग हैं, लिखिए ये जुमला, जिनकी अकल फितरत की ताबे होती है। ये बहुत अहम बात है। हम कहते हैं जीनियस, नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, बहुत ईवल जीनियस है दुनिया में। मैं आपको छोटी सी मिसाल समझाती हूँ कि हिदायत का पहला कदम कायनात पे गौर है। पहाड़ों को देखो, सूरज को देखो, सितारों को देखो, मज़ाहिर फितरत को देखो, जैसे खोल आंख जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। गौर व फिक्र पहला कदम है। इसके बाद दिल में तलब आती है कि है कोई ज़ात जिसने ये सब बनाया, आयाते कौनी है कायनात की, इसको देखो। जब ये हो गई, अल्लाह की पहचान आएगी, तो फिर अगला कदम क्या है कि अब अल्लाह को पहचानना, तो उसको याद भी रखो। वख्तिलाफ़ लैली आयात उलिल अलबाब, कुरान ये दोनों चीजों को जोड़ देता है। आप देखिए कि अकल जो होती है ना, ये बंदे को बहुत ज्यादा डिफेंसिव बना देती है। अगर हजरत इब्राहिम अकल से पूछ रहे होते तो कभी भी कूदते ना, आके किनारे खड़े ही रह जाते। लेकिन दिल बीच में पड़ा। फितरत क्या कहती है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल समझाती हूँ। जब तक अकल फितरत के तकाजे के अंदर होगी ना, तो वो लुब है। मसलन आप देखिए कि अगर हम देखें कि एक औरत और मर्द, अल्लाह ने औरत मर्द की शादी रखी, भाई और बहन की शादी का तसव्वुर आता है, ये कौन मना करता है आपको? फितरत मना करती है। अंग्रेज हो, गोरा हो, काला हो, मुसलमान हो, नॉन मुस्लिम हो, किसी कल्चर में सगे भाई बहन की शादी का सुनकर कराहत आएगी ना। लेकिन आप अकल से पूछे दोनों में क्या फर्क है, जिस्मानी तौर पे क्या फर्क है? बल्कि मैंने आप पिछले सालों में कोट की थी बात, एक शख्स की बुक, उसने को पूरे लिखे, जो रैशनलिज्म होता है ना, जो रैशनलिस्ट है, कि जो अपनी अकल से दीन सीख रहे हैं आज के दौर में, लोगों को सिखा रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि कितने बेवकूफ हैं मुसलमान, और वो मुसलमान है खुद भी, कि अपने घर में एक ऐसी लड़की मौजूद है जो आपको बड़ी अच्छी तरह से जानती है, जो आपकी पसंद नापसंद को जानती है, सलीका शुआर है, आप उसको किसी गैर मर्द के साथ ब्याह देते हैं और बाहर से एक अनजान लड़की ले आते हैं। शादी के लिए सबसे बेहतरीन औरत बहन है। ये लिखी हुई है, किताबें लिखी हुई है। ये अकल परस्त है। लुभ क्या है? अकल फितरत के साथ मैच करे, उससे ऑपोजिट ना हो जाए। वाकई डॉक्टर तो कह देंगे जिस्मानी तौर पे तो औरत मर्द के जिस्म में फर्क नहीं, और आज आप देखिए, और अल्लाह माफ करे मैं जो कह रही हूँ ऐसा हो ना, लेकिन ये होगा। अब ये बातें सुननी मिल गई, भाई बहनों की शादियां, चार चार बच्चे हैं, माँ बेटों की शादियां हो रही हैं, नानी नवासे की शादियां हो रही हैं, और मुझे अब लग रहा है कि ये सदी जो होमोसेक्सुअलिटी के गंध घोल चुकी है ना, आने वाली देखिएगा 20, 25, 26 सदियों में, अब ये आम बात होगी सगे बहन भैया शादियां कर रहे हैं। लिख के ये मेरे जुमले कोई कहीं डाल दे, अगली सदी में कहीं अल्लाह ने इसको दूसरों को सुनाने पड़े तो सुन लीजिएगा। आने वाले फितने ये है, बाप बेटी के ताल्लुकात होंगे, और ये तो साफ दिख रहा है, हदीसों में आता है कि कयामत के करीब ये सारे महरम रिश्तों में जिना होंगे, मैरिड लोगों के जिना बाम हो गए। ये तो मैं सुनती हूँ, मसले मसाइल लोगों के, पहले कवारे लड़की लड़कियां, क्योंकि अब उसको एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने। अब माँ को भी पता है ये शादी से पहले करेगी कहीं ना कहीं रोमांस, चलो एक से ही कर रही है करने दो, ये लड़का करेगा चलो जो निकाह कर देते हैं फिर जो मर्जी करो। ये अब एक्सेप्टेबल है, अब तो पहले एक्सपेक्टेड था, एक्सेप्टेड है, बट अब ये इस दौर में ये मैरिड, उसका मियाँ उसकी बीवी, उसकी बीवी उसका, में 2-4 साल में वो मियाँ उसका बन चुका था, वो बीवी उसकी बन चुकी थी, ये दोनों घर क्रॉस क्रॉस हो के, वो उसके घर खुश, वो उसके घर खुश, ये आम हो रहा है क्योंकि ये हम फितरत के खिलाफ जा रहे हैं। अब यहाँ बात हो रही है उलुल अलबाब की, ये कौन है? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं खड़े भी बैठे भी और अपने पहलुओं पर भी, व यतफक्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ध, और मजीद गौर व फिक्र करते रहते हैं आसमान और जमीन की तख्लीक में। और इस सारे गौर व फिक्र से किस नतीजे पे पहुंचे? यहाँ पे जरा सा एक पॉज लगा लीजिए, नॉन मुस्लिम काफिर वो भी कायनात पे गौर करता है, लेकिन वो इस गौर व फिक्र के बाद इस नतीजे पे नहीं पहुंचता जिस पे एक मोमिन पहुंचता है, उलुल अलबाब वाला पहुंच जाता है। क्या? कि रब्बना मा खलकता हाज़ा बातिला, ए हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेमकसद पैदा नहीं किया। उसका जहन मखलूक से उठता है, ये मैं जो एक बोलने लगी ना सेंटेंस शोर से लिख ले, मखलूक पे गौर किया, खालिक तक पहुंचे, वहां से मकसद हयात मिल गया। ये तीन चीजें हैं मेरी आपकी जिंदगी का खुलासा, ट्रायंगल है। गौर व फिक्र कायनात पे करिए जो मखलूक है, इसके बाद क्रिएटर तक पहुंचे यानी क्रिएशन पे गौर कीजिए, क्रिएटर की मोहब्बत आएगी और पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाएगा। बस ये कहानी है चार लफ्जों की। नॉन मुस्लिम के लेबोरेटरीज में बैठे हुए हैं वो, सूरज चांद सितारों पे कमंदर डाल रहे हैं, क्रिएटर तक नहीं पहुंच रहे। वो खुद क्रिएटर बनने का दावा कर देते हैं जब उन्होंने जरा सी इन्वेंशन की, एक शख्स ने चांद बनाने की कोशिश की, कुछ गैसों को जमा किया, एक खास जगह पे बना ली, देखा वो देखने में चमकता हुआ एक गोला बन गया, तो उसने खुदाई का दावा कर दिया कि मैंने भी चांद बना लिया, मैं भी खुदा हूँ। काफिर कायनात में खो जाता है और उसके बाद खालिक को भूल जाता है, मोमिन कायनात में खोकर खालिक को पा लेता है और उसके बाद फिर मकसद हयात को पा लेता है। रब्बना मा खलकता हाज़ा बातिला, उस वक्त फिर इंसान सोचता है, और रात तहज्जुद में अगर आप इन आयतों पर गौर व फिक्र करें, आपको ऐसे लगेगा आप एक नई दुनिया में चले गए। मैं क्यों खा रही हूँ, मैं क्यों पैदा करी गई, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, ये मेरा सोना जागना उठना, उसको एक खला महसूस होता है, उसका दिल कहता है कि अगर मैंने कोई नेकी किया अब इसका कोई बदला मिले, कोई गुनाह किया है तो उसकी सजा मिलनी ये लाजिम बात है। और फिर उसको लगता है कि वाकई इसके बाद एक जहान होगा जहां फिर नेकियों बदियों के असल बदले मिलेंगे। तो साथ ही फिर दुआ क्या निकली, सुबहानक फकीन अजाब अन्नार, तू पाक है इससे कि कोई अबस काम करे, बस तू हमें दोजख के अजाब से बचा ले। यानी बात शुरू हुई थी इख्तलाफ लैल पे गौर व फिक्र, और इख्तलाफ लैल क्या है? ठंडा गर्म, कभी रातें गर्म कभी लंबी कभी ठंडी, कभी आप देखिए कि अच्छी नींद आती कभी नहीं आती, कभी दिन बड़ा अच्छा गुजरता है रात में तकलीफ है, कभी कुछ कुछ, यानी हर वक्त डाइवर्सिटी चल रही है कायनात में, हर वक्त चेंजेस आ रही हैं बड़ी बड़ी। इंसान इन तब्दीलियों से भी अल्लाह को पाता है और क्या कहता है कि रब्बना इन्नका मन तुदखिल नार फकद अख्ज़ैतहु, ए हमारे रब, जिसको तूने दाखिल कर दिया आग में बेशक इसको तूने रुसवा कर दिया। ये जो अख्ज़ैतहु है ना, खिज़्युन से है, पीछे भी पढ़ा था, ऐसी रुसवाई जिसमें दूसरों के सामने बंदे की बेइज्जती हो जाए। बस आपको बुखार है ना तो ये खिज़्युन नहीं है, लेकिन आपको कोई स्किन डिजीज हो गई और आपके जिस्म से पस निकल रही है जिसको दूसरे देखकर आप पे तर्स खा रहे हैं, ये खिज़्युन है। यानी इसमें एक ऐसी ह्यूमिलिएशन होती है कि इंसान दूसरों की नजरों से भी गिर जाता है और उसका दिल करता है कि कोई बंदा मेरे हाल को ना जाने। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारा हाल कभी ऐसा ना करना कि जो दूसरों की नजरों में हमें काबिले रहम बना दे, ऐसी जिल्लत जिससे शर्म आए, रुसवाई की बात कह लीजिए, ऐबों का जाहिर हो जाना सजा के तौर पर, और ये अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ जिंदगी बसर करने का लाजमी नतीजा होता है कि अल्लाह ताला उस बंदे को फिर दुनिया की भी रुसवाई देता है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। फिर इसके बाद आप देखिए कि यहाँ तक जब आते कि अल्लाह ताला से साथ ही एक और पुकार लगा दी कि वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, जालिमों का कोई मददगार नहीं है। क्या जुल्म, रातों को खड़े होकर इंसान को अपने जुल्म याद आते हैं, मैंने उसके साथ ये ज्यादती की, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मैंने गीबत कर दी, मैंने बोहतान लगा दिया, मैंने किसी को हाथ लगा दिया, मैंने थप्पड़ मार दिया, मैंने जमीन पे पांव तेजी से रख लिया, सख्ती से रख लिया, اس طریقے سے انسان اپنا محاسبہ کرتا جاتا ہے، اسی سے بھی تزکیہ ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ پچھلی آیتوں میں یہود کی بدنیتوں کی بات تھی نا، کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرے اور اس کو فقیر تک کہہ رہے ہیں. یہاں اس کے اپوزٹ ایک کردار ہے کہ جو عاجز ہے. وہ کون تھا جو اس کو تعریفیں بڑی پسند ہے، جو دوسروں کے اندر اپنی شہرت چاہتا ہے؟ یہاں کون ہے؟ ہر بات میں اللہ، اللہ کی ذات، کائنات پہ غور. اور لکھیے یہ بات، قرآن پاک پڑھنا اب عبادت ہے نا، سبھی ہی جانتے ہیں. کائنات پہ غور و فکر بھی عبادت ہے. ایک لمحے کا غور و فکر بعض دفعہ کئی گھنٹوں کی عبادت سے زیادہ انسان کو نیک بنا دیتا ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ غور و فکر کریں تو انسان پہ کیا افیکٹس آتے ہیں؟ واٹ آر دی افیکٹس آف دی تھنکنگ اور غور و فکر کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات ہے، اللہ کی محبت آتی ہے. آپ جو چیز دیکھیں گے اس سے متاثر ہوں گے نا. آپ یہ کہیں گے یہ مائک کس نے بنایا، تو آپ اس مائک بنانے والی کمپنی سے متاثر ہو جائیں گے. آپ آسمان دیکھیں گے، آپ کہیں گے یہ کس نے بنایا، تو آپ آسمان بنانے والے سے متاثر ہو جائیں گے. جتنا ہم مادی چیزوں کے بیچ میں رہتے ہیں نا، اتنا ہم مادی چیزوں کے قریب ہیں. ہائے وہ کرتے رہتے ہیں، وہ کمپنی، وہ برانڈ، وہ فلاں، وہ فلاں. جب آپ اللہ کی چیزوں میں غور کرتے ہیں تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، پھر طبیعت کا جھکاؤ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. آپ خود فیل کریں، آپ کھلے میں نکل جائیں، آپ کے جسم کو ہوا لگتی ہے، کبھی ٹھنڈ لگتی ہے، کبھی کچھ، آپ کے اندر ایک عجیب سی نرمی آتی ہے. آپ یہ ٹھنڈک آپ اے سی کے آگے لے کے بیٹھ جائیں تو وہ آپ کو وہ کمپنی پہ پیار آئے گا جس نے وہ بنائی ہے، لیکن اندر وہ نرمی نہیں آئے گی. پھر اسی طرح اللہ کی خشیت آتی ہے، خوف آتا ہے، انسان کا اپنے خالق کی طرف رجوع شروع ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، عبادت کرنے کو دل کرتا ہے، دل متوجہ ہوتا ہے. آپ کبھی بہت خوش ہوں، صاف ستھرے کپڑے پہنے، آپ کا گھر بھی صاف ستھرا ہے، کھڑکی کھول دیں، ہوا بھی آ رہی ہے، باہر سے بادل دکھ رہے ہیں اڑتے ہوئے، درختوں کے پتے سرک رہے ہیں، آپ کو خود ہی نفل پڑھنے کو دل کرے گا. آپ وہاں کھڑے ہو کے ایسی قرآن کی قواعد شروع ہو جائیں گے کہ واہ میرے مالک، تیری دنیا کتنی پیاری ہے. تو یہ سب کچھ کیا کریں، ہم آرٹیفیشلی اپنی زندگی اتنے زیادہ الجھنوں میں ڈال کے رکھ لیتے ہیں کہ جس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہمارے ارد گرد بہت کچھ ہے. اور ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم اولوال الباب ہیں، کیا میں یہ غور و فکر کرتی ہوں؟ اور یہ کائنات کا غور، نہ اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے، نہ قبلہ رخ ہونے کی ضرورت ہے. آپ پاک ہیں، آپ ناپاک ہیں، آپ ہر وقت یہ غور و فکر کریں. گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ٹرینز میں بیٹھتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں. میں اکثر جب جہاز میں بیٹھتی ہوں تو میرے پاس دونوں تینوں چوائسیز ہوتی ہیں، کہ میں بک کھول کے کوئی دعائیں پڑھنے لگ جاؤں، یا میں ریڈنگ کر لوں، میں بک کچھ پڑھوں. پھر میں سوچتی ہوں یہ تو میں کہیں بھی کر سکتی ہوں، تو میں ونڈو سے باہر کیوں نہ دیکھوں، تو پھر جو میں زبانی دعائیں آتی ہیں میں وہ کیوں نہ پڑھ لوں. اکثر میرا شغل ہے کہ فون فل چارج ہم کر کے لے کے جاتے ہیں، جہاز میں بیٹھے ساری دعائیں اپنی پڑھی، پڑھائیں، جو بھی کیا، اس کے بعد تلاوت لگا دی. کئی دفعہ ہیڈ فون ایک ہی ہوتا ہے، ایک کان اپنے ٹوٹی یہ لگا لیتے ہیں، میرے میں لگا دیتے ہیں، ہم دونوں ہلتے بھی نہیں اپنی جگہ سے، کیونکہ ہم ایک ہی چیز سن رہے ہوتے ہیں، ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک چیز سن رہے ہیں. اور پھر وہ آیتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، تو ساتھ باہر دیکھو، باہر دیکھنا ہے. اور 80% میرے کانوں میں تلاوت چلتی ہے. میں کہتی ہوں اگر مر بھی گئی اس دوران تو چلو تلاوت سنتے بھی مروں گی نا. اور دیکھتی باہر ہوں، آنکھیں نہیں بند کرتی. کیوں؟ سوچ کر کہ یہ میں بعد میں نہیں دیکھ سکتی. اور اس وقت کی عبادت جو ہوتی ہے وہ غور و فکر کی عبادت ہوتی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ آپ کو پھر اللہ کا قرب دیتا ہے. اس سے آپ کے اندر ایک عجیب سی روحانیت بھی آ جاتی ہے، اور پھر آپ کو کائنات پہ غور و فکر سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے. اور وہ کیا؟ ہر چیز اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے، مجھے بھی جانا ہے. ایک چھوٹا سا بیج ڈالا تو پھل بن گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری نیکیوں کے بیج ضائع ہو جائے، میری محنتوں کا، کوششوں کا اللہ کو پھل ہی نہ دے؟ پھر آپ کائنات پہ غور و فکر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات بامانی ہے، تو مجھے بھی بامقصد بننا ہے. پھر ایک اور سبق ملتا ہے کائنات پہ غور و فکر سے، کہ ہر رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، میری مشکلوں کے بعد ضرور آسانیوں کی صبح آئے گی. آج دنیا کی کوئی مشکل ہے، آخرت کی آسانیاں ہوں گی، بلکہ دنیا میں ہی اللہ آسانیاں کر دے گا. اور انشاءاللہ اس طرح کرنے سے اللہ کی محبت میں اضافوں کی کثرت بھی ہوگی. یہ آیتیں یاد کر لیجئے، حفظ کے اندر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. 10 آیتیں 90 سے لے کے 200 ہے نا، تو آپ ایک ایک دن کی ایک ایک آیت جو چھوٹی ہے تو اس کو دو کر کے، تو مطلب اپنا موٹیویشن قائم رکھے میں نے یاد کر لی. اور ہر روز رات کو عادت بنائیں کہ سحری کے وقت، رات کو جب فجر کے لیے اٹھے اس سے تھوڑا پہلے، تو آپ اس کو سنیں. ابھی پڑھنی نہیں آتی نا، تلاوت لگا لیں. شام کے اذکار ہیں، سونے اور جاگنے کے اذکار ہیں، یہ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی، اتنی خوبصورت آوازوں میں ہیں. لیکن ضرور کچھ کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح مل کے کریں تو کام جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، ورنہ رہ ہی جاتے ہیں. फिर इधर से एक और चीज पता चलती है कि अल्लाह जीना यस्कुरून अल्लाह कियामन व कऊदम वाला जनूबिहिम। क्या पता चला, लेट के भी जिक्र किया जा सकता है, बैठ के भी किया जा सकता है। लोग कहते हैं अच्छा जी कुरान पढ़ सकते हैं लेट के, सर से दुपट्टा उतर जाए तो पढ़ सकते हैं। अब मुझे पता सारी रात अब दुपट्टा और स्कार्फ पहन के सोएंगी, पिन चुभ गई तो क्या करेंगी। ये भी एक हमारा एक अजीब सा डॉगमा बन गया हुआ है। तो लेटे बैठे उठते खड़ते हर हाल में अल्लाह ताला को याद कीजिए। अल्लाह ताला को कोई इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं चाहिए होता हमारे वाला के पहले अच्छे तरीके से तिरस्कार लिया और एक स्काफ नजर आ गया, कहते तोबा तोबा कुरान पढ़ा रहे थे, एक बाल गिर गया, एक बाल नजर आ गया। यकीन करें पूरा सर भी खोल के पढ़ लें तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हम अदब के साथ तहम्मुल के साथ पढ़ते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है जो तहम्मुल करते हैं। लेकिन अगर आप किसी को बगैर दुपट्टे के कुरान पढ़ता देखे तो आप ये नहीं कह सकते कि वो भटका हुआ है। असल ये देखिए कि अंदर क्या जा रहा है, अंदर क्या हो रहा है। और इसके साथ तहज्जुद की एक दुआ भी आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ा करते थे, हिस्न मुस्लिम की शुरू की बिल्कुल पहली दूसरी ही दुआ है क्योंकि उसमें तरतीब के साथ चलता है। तो ये सारा कुछ ही इंशाल्लाह हमारे मामलात को आसान करता है। सही मुस्लिम की रिवायत है, फरमाए कि जब कुछ लोग बैठकर अल्लाह के जिक्र में मशगूल होते हैं, फरिश्ते इनको घेर लेते हैं और अल्लाह की रहमत उनको ढांपती है और सकीनत उन पर नाजिल होती है और अल्लाह ताला अपने पास वालों में उनका जिक्र करते हैं। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र करने वाला बनाए। एक और बहुत बड़ा फायदा होगा इस गौर व फिक्र का, जाती मसले गमों से निकल जाएंगे, बीमारियों का गम चला जाएगा। लोग कहते हैं सारी रात दर्द होती रही, कहते हैं लोग पाँव में दर्द थी, सर में दर्द थी, टांग में दर्द थी। आप जरा सा खिड़की को हटाते पर्दा, बाहर सितारों को देखते या जो उस वक्त नजर आता है उस पर गौर व फिक्र शुरू कर देते, आपको अपनी दर्द याद ही नहीं आनी थी। और इंशाल्लाह ताला इस तरह से आप अपने आप से बेनियाज भी हो जाते हैं, वहम नहीं आते, तन्हाई का एहसास नहीं होता। ये भी एक फायदा लिख लें, तन्हा अकेले हैं। अब आप कहते हैं हाय मैं अकेली, डर लग रहा है, खौफ आ रहा है, ये और कोई डराने की जरूरत नहीं है। आप बस खिड़की से देखें बाहर और अल्लाह ताला से बातें करना शुरू कर दें, आपको अल्लाह ताला बिल्कुल अपने करीब देखेंगे। और अब आप देखिए कि जो अगला हिस्सा दुआ का, उसमें तो खास तौर पर इंसान का शऊर बिंजन जोड़ा जाता है कि रब्बना इन्ना समय ना मुना दी युना दिली ईमान, आयत 193 है। ऐ हमारे रब, हमने पुकारने वाले को सुना जो पुकारता है ईमान की तरफ, युनादी लिल ईमान यनामिनु बिकुम फामन्ना, जो ईमान की निदा लगाता है कि ईमान लो अपने रब पर, हम तो ईमान ला चुके। अब ये मुनादी कौन है? तीन मुनादी लिखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के दौर के मुबल्लिगीन और कुरान, ये तीन है। मुनादी कहते पुकारने वाला, कॉलर, द पर्सन हु कॉल्स। कितने प्यार से बंदा कहता है कि ये हमें एक पुकारने वाले ने पुकारा और हमने उसकी बात सुनी। यानी ऊपर बात थी ईमान बिल्ला की और आखरत पर ईमान की बात थी ना, यानी इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है बेसिकली। देखिए पहली जो दुआएं गुजरी है ना, उसमें हमने अल्लाह पर ईमान पढ़ लिया, आखरत पे पढ़ लिया कि अजाब से बचा आखरत के। अब यहाँ रसूल पर ईमान की बात है। जो ही किसी नबी या रसूल की पुकार कानों में आई, कुछ लोग लब्बई कहते हैं अबू बकर की तरह, फौरन उन्होंने कबूल कर लिया, सुना था तो माने थे ना। आज जितने लोग मुबल्लिग हैं, तबलीग करते हैं, दावा कर रहे हैं, ये सब मुनादी हैं। किसी न किसी के कान में तो आवाज पड़ती है ना। सूरत फातिहा की बातों को याद कीजिए कि उलुल अलबाब में से एक शख्स सही सलामती के साथ अक्ल की रहनुमाई में यहां तक पहुंच गए कि अल्लाह को पहचान लिया, आखरत को पहचान लिया। अब ये भी सोच लिया कि या कनाबुदू या कनस्तैन, लेकिन अभी भी उसको एक रहनुमाई चाहिए और वह नबूवत और रिसालत की है। इसीलिए फरमाया कि जालिकल किताब ला रही बफी। तो बिल्कुल यहाँ अल्लाह ताला ने ये बात करके रसूल की अहमियत को जिंदगी में साबित किया। अब बताइए जो सुनता ही नहीं है वो कैसे ये मानेंगे? यहाँ से एक और बात नोट कर लें अपने लिए कि सुनना पड़ता है, मुनादी की बात को सुनना पड़ेगा। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक दिल नहीं खुलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तिर्मिजी की रिवायत है अबू हुरैरा से, जो डरा और भागा और जो भागा वो मंजिल को पा गया। सुनो अल्लाह का माल बड़ा महंगा है, खबरदार अल्लाह का माल जन्नत है। ऐसे ना, आपको किसी चीज से डर लगेगा तो खड़े तो नहीं रहेंगे ना। तो जहन्नुम से डर क्या है कि मुनादी की पुकार को सुन के भागो, डरो। अबू हुरैरा कहते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैंने जहन्नुम से भागने वाले किसी शख्स को सोते नहीं देखा और ना ही जन्नत के किसी ख्वाहिशमंद को सोते देखा। तिरमिजी की रिवायत है। आज हम सोए हुए हैं, सच बताएं सोने वालों को जन्नत मिलती है, सोने वाले जहन्नुम से बच सकते हैं? नहीं बच सकते हैं। ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار, ऐसे लगता है वो अंदर दिल से टपकते हुए आंसुओं से ये दुआएं निकलती हैं, और इंसान दुनिया और आखिरत की रसवाइयों से बचते बचते आखिरत के इस मैदान में पहुंच गया कि अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। फिर देखिए दोबारा वही बात कही जा रही है कि रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे, वकफ़िर अन्ना सय्यातिना और हमारी बुराइयां हमसे दूर कर दे, व तवफ्फना माल अबरार और हमें नेक लोगों के साथ फौत करना। कितनी बड़ी बात है, नेकों का साथ, अच्छे लोगों का साथ है। इसी तरह से पुकार सुनी थी जिन्हों ने तो अल्लाह के नबी पर ईमान लाए थे, सूरज जिन में आएगा, इन न समय न कुरान न अजबन, हमने अजब अजब कुरान सुना। तो जब दिल में झुकाव होता है ना, तो अल्लाह ताला फिर बंदे को इन बातों से फायदा भी दिलवा देता है। कई लोग सुनते हैं, फायदा सबको नहीं होता। कोई एक बार सुनता है उसका दिल बदल जाता है, कुछ का दिल नहीं बदलता। और ये जो बात है ना तवफ्फन माल अबरार, नेक लोगों के साथ फौत करना, ये क्यों जरूरी होता है? इसलिए कि अलमरु मा मन अहब, जिससे मोहब्बत की होगी ना उसी के साथ इंजाम होगा। अबू बकर ने सारी जिंदगी नबी सल्लम से मोहब्बत की, आप देख लीजिए कब्रें भी साथ हैं, उम्मीद की जाती है जन्नत में भी अल्लाह ताला उनको साथ देगा। सूरत निसा 69 में हम पढ़ेंगे फाउलाइक माल लजीन अनम अल्लाह अलैहिम मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा, अल्लाह हमें इन्हीं लोगों का साथ करे। क्या पता चला कि नेकी करना और बुराई को तर्क करना अल्लाह की तौफीक से होता है। इसी वजह से बंदा अबरार में शामिल होता है, क्योंकि नेकियां करके फिर बुराइयों को छोड़ता है और मौत तक उस पर कायम रहता है। फिर आप देखिए तीन दुआएं ना, फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, वकफ़िर अन्ना सय्यातिना, गुनाहों की माफ़ी, बुराइयों को दूर करना, और तवफ़ना माल अबरार, नेकों के साथ मौत, क़यामत के दिन की रसवाई से बचने की बात। देखिए नेकों के साथ मौत भी आए तो कितनी अच्छी है, उनको कलमा पढ़ता देखकर हम भी मर पड़ लेंगे। मैं एक दिन ऐसी बैठी सोच रही थी कि रिसेंटली जो जहाज़ क्रैश हुआ, तो मैं अपने हस्बैंड से शेयर कर रही थी कि आमतौर पे तो हम कहते हैं ना कि जब इंसान मौत की वक्त में होता है तो नज़ा में चला जाता है ना, तो उसमें होश नहीं है, कोई बीमारी है, डुबकियाँ, नकाहत है, तो कई दफ़ा नहीं लोगों के मुँह पर कलमा आता। तो मैंने इनसे कहा कि जब जहाज़ में आग लगती है, अल्लाह ताला सबको बचाए और ऐसी मौत से बचाए, लेकिन बंदा फिजिकली तो ठीक होता है ना, अब उसकी जुबान भी ठीक है, अकल भी ठीक है, अब भगदड़ मची है, तो कितना अच्छा मौका होता होगा कलमा पढ़ने का। तो मुझे कहने लगे कि कलमा तो फिर काफिर भी पढ़ ले, फिर फिरौन ने भी तो पढ़ा था ना कि आमन तो रब्बी मूसा। मैंने कहा अल्लाह जुल्म नहीं करता, मैं आम मुसलमानों की बात कर रही हूँ। कईयों को उस वक़्त भी हाल दो हाल पड़ जाती होगी, कलमा नहीं आएगा जुबान पर, और कई दूसरों को पढ़ता देख कर पढ़ लेंगे। अल्लाह के ऊपर है क्या हुआ, बस नीयत अच्छी कर ले, अपने इरादे, मत अल्लाह से ये दुआ करें कि खात्मा बिल खैर करना, बुरे खात्मे से बचा देना। रब्बना वातिना मा वअतना अला रुसुलिक, अगला हिस्सा देखिए, ए हमारे रब हमें वो सब कुछ दे दे जिसका तूने वादा किया अपने रसूलों की जुबान से। दुनिया की इज्जत, दुनिया की शोहरत, दुनिया के गलबे, सुकून, इत्मीनान, खुशी, वला तुखजीना यौमल क़ियामा, बस क़ियामत के दिन रुसवा न करना। इन नकला तुखलिफुल मियाद, तू वादे की खिलाफ वर्जियां नहीं करता। मोमिन कैसे लगता है ना, दिल दिमाग आखिरत में खुबा हुआ है, शर्मिंदगी से आप बार बार देखे ना, रसवाई की बात है, दुनिया की रसवाई, आखिरत की रसवाई, कब्र का अजाब, जहन्नुम का अजाब। इससे पता चलता है कि एक मोमिन के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ कितना होता है। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि रसूलों के वादों पर यकीन लाना चाहिए। और रसूलों के वादे क्या थे, इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति, अमल करके ईमान लाकर अमल सालेह किए, दुनिया भी अच्छी आखिरत भी अच्छी है। और ये वादों का यकीन बंदे को फायदा देता है। इसी तरह एक वादा सूरत नूर आयत 55 में लिखा हुआ है, वहां नोट कर लीजिएगा जाके, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफन्नहुम फिल अर्दी, कि अल्लाह ने ईमान लाकर अच्छे काम करने वालों से वादा किया कि उनको जमीन में जानशीन बनाएगा जैसे इनसे पहले लोगों को बनाया था। चार वादे तो अल्लाह ने मोमिनों से किए, इस पर मैंने एक दफा दर्स भी दिया था, छोटे छोटे वादे, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, वश्कुरूली वला तकफुरून, لئن شکرتم لازیدنکم، تو اللہ کے تو کیا کیا وعدے. پھر اسی طرح سورۃ توبہ 72 کا نمبر نوٹ کر لیں، وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحتی الانہار. اللہ نے ایمان والے مردوں عورتوں سے ان جنتوں کا وعدہ کیا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور پاکیزہ گھروں کا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور سب سے بڑھ کے ورضوان من اللہ اکبر، رضا مندی اللہ کی بڑی ہے. اور ایک وعدہ تو سورت محمد آیت 7 میں، نمبر صرف آیتوں کے نوٹ کر لیا کریں، بعد میں لکھ سکتے ہیں. سورت توبہ 72 اور سورہ محمد 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا. دیکھیے ذرا، اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی رسوائی سے سب کو بچا دے. اور آپ دیکھیے کہ ان دعاؤں میں اگر آپ دیکھیں تو مٹھاس بھی ہے، خوف بھی ہے، لہجے کی نرمی بھی ہے، گداز بھی ہے اور عاجزی بھی ہے، خشوع اور خضوع بھی ہے. اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ دعائیں دل سے نکل رہی ہیں. اور ان نقلات اخلف المیات، تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا یقین پہلے ہی ہے.